राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 सितंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भिनासर में हुआ। राम
आज बाल मंडली आई है तो कुछ बातें बालकों के लिए कहें। जब तक माता पिता जीते रहते हैं तब तक सभी माँ बाप के सामने बालक ही होते हैं और परमात्मा तत्व की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब उनको बालक ही कहा है। सांख्य योग पृथक बाला पट प्रबंधते न पंडिता एकमप्यास सम्यक विंदते फलम। तो यहाँ बाल छोटे बच्चों का नाम नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधते न पंडिता तो पंडित के सिवाय हुए है बालक है दूजे है पंडित को बालक दो अर्थ किए हैं दो शब्द दिए हैं। तो पंडित नाम किसका है कसद असद विवेकवती बुद्धि का नाम है पंडा वो साजाता जैसे जो पंडा बुद्धि जिसकी हो गई है उसका नाम है पंडित। पंडिता समदर्शिना पंडित कौन है जो समदर्शी है। समदर्शी का मतलब सब में परमात्मा तत्व देखते हुए समदर्शी है। समवर्ती ने समदर्शी न समवर्ती तो जमराज का नाम है समवर्ती परितराट समवर्ता होगा ना समवर्ता होगा सभी साथ में तो समता होने से संसार की समता होने से तो प्रय हो जाता है। संवर्ताव करते हैं वे है पेट विराट जमराज और पंडित होते हैं समदर्शिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौय स्थिनी सुनिश्चय व सौभाग्य पंडिता समदर्शिना वो समदर्शी हैं। मान जो परमात्मा कैसा है कि निर्दोषं हि समं ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है वो समान रूप से निर्दोष है समं ब्रह्म तो उस सम को देखने वाले होते हैं वे समदर्शी होते हैं। समं पश्यति योगिना समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्तुम ईश्वरम ऐसे जगह समता के देखने की बात कही है। उस साम्यावस्था में स्थित न हो तब तक सभी बालक ही हैं क्योंकि वो वास्तव मनुष्य जन्म पा करके उस तत्व को प्राप्त कर लेना खास काम होता है। जब तक वे नहीं होते हो तो बालक ही हैं परंतु अवस्था में बालक है उनके लिए कुछ बातें और सबके लिए ही बातें कहने की चेष्टा करता हूं भाई। अच्छी आ जाए भी तो बात भगवान की है महात्माओं की संतों की पुराणों की वेदों की स्मृतियों की और त्रुटि हो जाए वो मेरी है त्रुटियों को क्षमा करेंगे आप। बाल्यावस्था में जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं वे जल्दी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव जी है प्रहलाद जी है ऐसे कई हुए जो बाल्यावस्था से ही भगवान में लग गए और हमारा शास्त्र की रीति भी ऐसी बताई गई है जहां 4 आश्रम होते हैं 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। उस 4 वर्णों में जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनके लिए 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम मानो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम फिर वानप्रस्थ आश्रम फिर संन्यास आश्रम। तो आश्रम होते हैं वो वर्ण होते हैं जन्म से अलग अलग आश्रम अवस्था के अनुसार होते हैं। तो आश्रमों में बाल्यावस्था होती है वो वास्तव में विद्या अध्ययन करने के लिए होती है। तो विद्या अध्ययन वही करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ गए वे विद्या अध्ययन क्या करेंगे। तो विद्या अध्ययन करते समय वे विद्यार्थी कहलाते हैं, वे विद्यार्थी होते हैं। तो आप हम सब ही विद्यार्थी हैं, उस परमात्म तत्व की जानने के लिए चलते हैं, ये सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी है वो सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। जो विद्यार्थी होता है उसको सुख कहा, सुखार्थी होता है उसको विद्या कहा। तो हम लोग जो ब्रह्म विद्या से वंचित हो रहे हैं इसमें कारण है सुखार्थी, सुख चाहते हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुखार्थी में विद्या कहाँ से मिलेगी भाई। और विद्यार्थी न कुतो सुखम, जिसको विद्या अध्ययन करना उसको सुख कहा है। तो यही तनु कर फल विषय अनुभाई, ये शरीर है मानव शरीर, ये विद्यार्थी जीवन है। जैसे बड़ी अवस्था में गृहस्थ बालप्रस्थ सन्यासी होते हैं, तो बाल अवस्था एक छोटी चौथी अवस्था का छोटी का नाम है। ऐसे ही मनुष्य मात्र के इतने प्राणी मात्र संसार के 84 लाख के जीव हैं, और जो देवता हैं और भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस आदि ये सब होते हैं, जिनमें सब में मनुष्य मात्र है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें विद्या अध्ययन करना है, इस वास्ते यही तन कर फिर से विषय भाई, ये सुख नहीं है। इसमें सुख नहीं हो तत्व को प्राप्त करना है। ब्राह्मण के लिए तो विशेषता से लिखा है कि ब्राह्मण से हो यम क्षुद्र कामा में निश्चिते। ब्राह्मण का शरीर है तो तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर तो प्रसाय तप से और प्रेत्यानंद सुखाय, यहाँ तो तप करे कृष्ण तप बड़े क्लेश से तपोमय जीवन बितावे अपना। ये तपस्वी होते हैं ब्राह्मण सदाई, तो वे जो ब्रह्मचारी होते हैं उन ब्रह्मचारियों के दो भेद बताए हैं। एक ब्रह्मचारी होते हैं नैष्ठिक, एक होते हैं उपगुरुवान। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे है ब्रह्मचर्य अवस्था से ही परमात्मा की प्राप्ति के तरफ चल देते हैं, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। परमात्म तत्व को प्राप्त करना ये मनुष्य मात्र का काम है, तो आरंभ से ही इसमें लग जाए तो ब्रह्मचारी पढ़ते पढ़ते इसी में लगकर परमात्मा की प्राप्ति कर लिए जाए। वो गृहस्थ में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में अलग अलग नहीं जाते, वो ब्रह्मचारी अवस्था से ही संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। तो वे है नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। और जो दूसरे ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके फिर उसके बाद वे ब्रह्मचर्य व्रत का समापन करते हैं, तब स्नान होता है। वे स्नान करते हुए स्नातक कहलाते हैं, स्नातक। वे स्नातक फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। स्नातक का बड़ा शास्त्र में सम्मान बताया गया है, जो विद्या अध्ययन करके स्नातक होकर के जाता है, सामने राजा की सवारी आ जाए तो राजा भी आधा मार्ग उसको देगा, आधे मार्ग में चलेगा, आधा स्नातक आएगा। तो विद्या अध्ययन करके आते हैं उन स्नातकों का बड़ा सम्मान होता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी का सम्मान है ही सदा के लिए, वो तो संन्यास आश्रम में चला जाता है, भजन ध्यान करके वह तत्व को प्राप्त करता है। तो तत्व की प्राप्ति के लिए चलते हैं वे सब के सब विद्यार्थी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे भी और गृहस्थ भी और वानप्रस्थ सन्यासी भी, ये विद्यार्थी तो सब हैं, परंतु वो थोड़े गृहस्थ में चले जा रहे हैं। क्यों चले जाते हैं कि देखो, एक तो वैराग्य होता है स्वाभाविक, भीतर से रुचि होती है पारमार्थिक और स्वाभाविक परमात्मा की तरफ चलने वाले होते हैं, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते हैं। और जो विद्यार्थी है और विद्यार्थी अवस्था में अपने विचार के द्वारा पदार्थों का त्याग करके परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते, उनके लिए कहता है कि तुम गृहस्थाश्रम में चलो। तो गृहस्थाश्रम में जाना गृहस्थाश्रम के लिए नहीं है कि गृहस्थाश्रम में ही रहे। गृहस्थाश्रम केवल भीतर जो भोगों की सुख की इच्छा है उसका अनुभव किए बिना त्याग कठिन होता है, इस वास्ते उनको त्याग करने के लिए गृहस्थाश्रम करना है। जैसे कि भीतर में ज्यादा इच्छा होती है सुख की, वो भोग करके निकालने, तो गृहस्थाश्रम में जाना भी वैराग्य के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही गृहस्थाश्रम में जाना है। तो सदाई गृहस्थी नहीं रहना है, उनकी परीक्षा जो भोग कर देख लेते हैं तब तो उसमें वास्तव में भोगों में सुख नहीं मिलता। भोगे रोग भयम खुले चुरी भयम, इसमें तो रोग है, रोग होता है, आफत होती है। गृहस्थाश्रम में आफत कम नहीं होती है, आसक्ति के कारण से उनको पता नहीं लगता है, नहीं तो दुख बहुत है। इसमें सुख तो थोड़ा है, दुख ज्यादा है। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो ने बते, जो संबंध जन्य सुख जितने हैं दुख योने, ये दुखों के कारण ही है, दुखों के जनक ही है, दुख पैदा ही दुख ही दुख पैदा होता है। इस वास्ते भगवान ने कहा दुखालय अशाश्वतम, इस शरीर को दुखालय बताया, अशाश्वत मन रहने वाला नहीं है। दुखालय भी रह जाए तो कुछ दिन टिक जाए, परंतु रहेगा भी नहीं और मिलेगा दुख ही दुख। इस वास्ते ये दुख है, विषेन्द्रिय संयोग से जो सुख होता है, विषेन्द्रिय संयोग अग्रे अमृतोपम परिणाम विषम एवं, परिणाम विष की तरह होता है। तो संसार में गृहस्थाश्रम में जावे तो इसका निगाह रखे कि ये सुख होगा तो इसका परिणाम क्या होता है। तो एक बड़ा भारी अकाट्य नियम है कि जो सुख बुद्धि से सुख भोगता है उसको दुख पाना पड़ता ही है, नियम है, ये टल नहीं सकता। जो कोई सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा जबरन। सुख भोगता है अपनी मर्जी से और दुख भोगता है बिना मर्जी। जैसे चोरी करता है, अन्याय करता है, मारकूट करता है, लूटपाट करता है, तो ये सुख लेता है तो उसमें अंत में दंड होता है। राज में दंड भोगना पड़े नहीं तो अगर दंड भोगना पड़ेगा, जैसे उनको दंड भोगना ही पड़ता है, इस तरह से सुख भोगी को दंडा पड़ेगा। सुख भोगी को बोल तो इस वास्ते विषेन्द्रिय संयोगात यद अग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेवा, परिणाम विष की तरह होता है, तो वो जहर खड़ा पड़ता है। तो जब ये विषय भोगों में रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो वो गृहस्थाश्रम में रहते पर के हम गृहस्थी रहेंगे ऐसा विचार कर जाते हैं, वे फंस ही जाते हैं, फिर अगर उसे उठते ही नहीं। गृहस्थाश्रम केवल परीक्षा के लिए है कि सुख कितना है, दुख कितना है, ऐसा विचार करेगा तो उसको वैराग्य होगा ही, क्योंकि सुख तो होता है थोड़ा और दुख होता है बहुत ज्यादा। परिणाम ताप संस्कार वृद्धि, संस्कार दुख वृत्ति विरोधा से दुख में सर्व विवेकिना, विवेकी लेकिन दुख में एव सर्व विवेकिना, सब दुख सुख ही है, केवल दुख ही दुख है। तो ऐसे दुख भोग करके भी फिर वानप्रस्थ में जाकर के फिर संन्यास आश्रम में चले जाए, तो उनमें जाने में क्या, कृष्ण से सन्यासी हो जाए, वानप्रस्थ और सन्यासी हो जाए, सन्यासी तो सन्यासी होता ही है। ऐसे चरण में जाने के लिए जो पहले है अवस्था, ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। दो आश्रम मुख्य माने गए हैं, एक गृहस्थ आश्रम और सन्यास, ये देखने में भी आते हैं दो। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए पहले तैयारी होती है ब्रह्मचर्य आश्रम में, और वानप्रस्थ आश्रम है वो तैयारी होती है सन्यास आश्रम के लिए। वहां सहना पड़ता है वानप्रस्थ आश्रम में, शीत सहो, घाम सहो, वर्षा सहो, ये सहना पड़ता है। बहुत कह गए कि धूप वो भी सहनी होती है, वर्षा हो जाए तो पर्वत की चोटी पर बैठो, शीतकाल हो तो कंठ तक जल में खड़े रहो ठंडे में, ऐसे कर शरीर को पकावे जो संन्यास आश्रम में ठीक तरह से सह सके, ऐसी सहिष्णुता बनाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम। तो संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास के लिए है, इस तरह से चार आश्रम है। तो बालकों के लिए सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले विद्या अध्ययन है। विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था बताई गई, उसमें दो कारण विशेष है। एक तो बालक होता है उसके भीतर जिज्ञासा होती है, छोटे बच्चे हरे गए तो ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या है, ऐसा क्या है, ऐसे बालक छोटे होते हैं, वो पूछ नहीं है। मेरे काम पर मैं देखता हूँ बच्चे ने पूछ ये क्या है, ये क्या है, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो वो विद्या के अधिकारी हैं, विद्या जानना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके लिए तो ज्ञान होगा। जैसे भूखे के लिए भोजन होता है, प्यासे के लिए जल होता है, ऐसे जो जानना चाहते हैं ये तो इस कारण से विद्या अध्ययन करना चाहिए बालकों को। दूसरी बात है कि बाल्यावस्था में उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं होती घर की, कोई तरह की चिंता नहीं, कोई विषय नहीं, खुला समय मिलता है, बुद्धि भी ठीक होती है। विषयों में मन लगने के बाद में बुद्धि वैसी नहीं रहती जितनी पहली रहती है। तो इस अवस्था को लेकर बाल अवस्था में विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या पढ़ना खास काम है। विद्या पढ़ना और फिर गृहस्थाश्रम में उसमें धन का उपार्जन करना और फिर त्याग करना। तो उपार्जन करना है, विद्या का भी उपार्जन होता है, धन का भी उपार्जन होता है। तो उपार्जन में क्या करते हैं, क्षणशः कणशस्तैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः कणशस्तैव, विद्यार्थी के लिए सावधान रहना कि ये विद्यार्थी अवस्था है, एक क्षण मात्र भी, मिनट दो मिनट भी बिना अध्ययन के समय नहीं जाना चाहिए। ये विद्या अध्ययन में सावधानी रखनी चाहिए, समय की सावधानी, सब समय भगवान ये विद्या अध्ययन करना है। उस विद्या अध्ययन में एक बात और बतावे कि दो बात है, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, चाय कोकोन आदि का भी और भी भांग मदिरा पूजा कोई किसी तरह का व्यसन नहीं चाहिए। सादा सीधा शुद्ध भोजन और जल यही होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, नहीं तो भोजन फंस जाएगा तो वो विषयों में लग जाएगा तो विद्याध्यान कब करेगा। तो उस समय का ख्याल रखना है, केवल निर्वाह मात्र की चीज। इस वास्ते कहा शब्द दूर कर दुर्व्यसन, रखो व्यसन दो पास, दो व्यसन रखो न पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास, भगवान का भजन करो और विद्या अध्ययन करो, ये दो ही चीज रहनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लिए बताया है कि केवल विद्या अध्ययन के लिए लग जाए, भजन के लिए लग जाए। इसके लिए नियम बताया है कि सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले तारों के रहते हुए घन तारा रहते हुए उठ जाना चाहिए, कम से कम इतने तो तारा रहते हो तो तारा खूब गड़गड़ आ रहा है उस समय में उठ जाना चाहिए कम से कम, नहीं तो 4 बजे उठो। तो उसमें उठ करके संध्या करो अपनी और उसमें सब नित्य नियम करो। ब्रह्मचारी के लिए बात है कि अगर सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो उस दिन फिर दिन भर उपवास करो और गायत्री का जप करो, दिन भर भोजन नहीं। सूर्योदय हो गया ऐसे शाम को सूर्य सहित संध्या करना, सूर्योदय से पहले संध्या उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, उत्तमा संध्या वो होती है जो तारों के रहते हुए होती है, मध्यम संध्या वो होती है जो तारे लुप्त हो जाए सूर्योदय न हो तब तक होती है, और सूर्य से तो वो कनिष्ठ संध्या नीची संध्या हो जाती है। ऐसे ही सायंकाल में सूर्य रहते हुए संध्या उत्तम होती है, सूर्य के छिप जाने पर मध्यम होती है और तारा हो जाए तो वो कनिष्ठ होती है, ऐसे 3 काल की संध्या है। तो 3 ये समय बताया, 3 काल वो है कि सुबह संध्या करना, फिर जब भोजन करे उसने पहले संध्या करना और शाम को भोजन से पहले सूर्य देते हुए संध्या करना। ऐसे तीन भगत त्रिसंध्या तीन पुरुष संध्या करनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। संध्या का नियम है कि ब्राह्मण है और संध्या नहीं करता है तो वो फिर ब्राह्मण पण से पतित हो जाता है। तीन दिन अगर संध्या न करे तो कहते हैं स शूद्रवत बहिष्कार या सर्वस्मात द्विजकर्मणा, ब्राह्मण के कर्मों से उसको निकाल देना चाहिए। जैसे शूद्र को अधिकार नहीं है ऐसे ही उसको भी पढ़ाई का अधिकार नहीं, ब्राह्मण पंक्ति से उसको उठा देना चाहिए, ऐसा बताया। तो संध्या अहरा संध्या उपासित, रोजाना संध्या करे तो जल्दी उठने की बात ये जरूर बालकों में चाहिए। सूर्योदय उठने के बाद उसकी बुद्धि तेज नहीं रहती, सूर्योदय से पहले बुद्धि बड़ी तेज रहती है। हमारे एक मित्र थे शालग्राम जी कवि, वो कहते थे सुबह जल्दी उठ करके और सूर्योदय से पहले कविता बनाते हैं तो बहुत सुगमता से बढ़िया कविता बनती है, सूर्योदय के बाद में उतना विकास नहीं होता, ऐसा अनुभव भी हुआ है, शास्त्र भी कहता है। तो जल्दी उठ करके पढ़ाई करना सुबह के समय, ऐसे लोगों में आता भी है संथा पंथा पीसना तीनों प्रातः काल, संथा लेनी हो पढ़ना हो तो, और रास्ते चलता हो तो सुबह और पीसना हो तो सुबह उठकर जल्दी पीसो, तो ये जल्दी सुबह उठकर करने का है। बिलोना हो तो वो भी जल्दी कर लेना, सूर्योदय से पहले पहले बहन माताओं को चाहिए, जिनके है गए और करते हैं नहीं तो शहर में तो पता नहीं है भाई, तो बिलोना जल्दी कर लेना चाहिए। उसमें एक प्रसिद्धि है कि सूर्योदय हो जाता है तो उसका घी कम आता है, लाला उठ जाता है ना कन्हैया, वो कन्हैया उठे जिनसे पहले पहले बिलोलो तो घी आएगा ज्यादा, उठ जाता तो माखन खा जाता है, माखन चोर उठाता उसको कम आता है, ऐसी प्रसिद्धि है और करते भी है, ऐसा देखा भी सुना भी है, ऐसा क्या होता है ऐसा, तो वो देर शब्द प्रातः काल करने का है। तो विद्याध्ययन प्रातः काल करना, और फिर भी विद्याध्ययन क्षणशक कणशक है ना, क्षणशक एक क्षण भी निरर्थक न जाए, उठे धाते सोने तक विद्याध्ययन में लगना चाहिए, तो विद्या को अध्ययन करें वे बनेंगे जिन्होंने विद्याध्ययन किया है और समय पूरा लगाया है, व्यर्थ से पढ़ते हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों में ही आजकल ऐसी शिथिलता आ गई है जो भी अब समय की परवाह ही नहीं करते, अरे वे समय की परवाह नहीं करे हुए तो आप विद्याध्ययन कैसे करोगे, और विद्याध्ययन के बाद में धन कमाने में कणशः वह पता एक कण भी निरर्थक न जाने दे, क्षणशः कणशस्तेव ही वह विद्या अमर्थंच चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, भी समय खाली गया तो विद्वान कैसे बनेगा, अरे कण त्यागे कुतो धनम, छोटी छोटी चीजों को छोड़ता जाए धन संग्रह कैसे होगा। तो दोनों को सावधान रहना चाहिए, विद्यार्थी को विद्याध्ययन में तत्परता लगना चाहिए, उसके लिए हरदम सावधान रहे। सावधानी के लिए कहा है जिसे कहा कौवा होता है वो सावधान होता है, ऐसा होना चाहिए उस सावधानी। और नींद कुत्ते की तरह लेनी चाहिए, कुत्ता होता है नींद लेता है फट खुल जाता है, जितने शाम ले जाता थे वजह भगवत ध्यान बुगले की तरह ध्यान रखे, वो बुगला मछली का ध्यान रखता है धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे विद्या का ध्यान चलते फिरते हरदम विद्या का ख्याल करना चाहिए। और श्वान निद्रा होनी चाहिए, और अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षण, ऐसे पांच लक्षणों वाले विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्याध्ययन करने में खूब मन लगाओ। विद्याध्ययन करने में विद्या में तीन हेतु बताए हैं, एक गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव साधनम्। तो ये विद्याध्ययन की बात कहता हूँ, आप सब सुनते हैं, मैंने पहले कह दिया जिनके माँ बाप है वे बालक है, जब तक तत्व ज्ञान नहीं तो बालक है, सबके लिए काम की चीज है, कई छोटे बालकों की बातें हैं और दूसरे सबके लिए, आप गए हमारे सबके लिए ये बातें हैं। तो बड़े सावधानी से विद्या ध्यान करना है, हर सम सावधान रहना, बात भी मैंने कही है कि साधन करने वालों को सावधानी ही साधना है, हर समय दिल में जागृत रहिए बंदा, वो जागृति का मतलब सावधानी। तो ऐसे विद्यार्थी पढ़े तो बड़ा विद्या तीन तरह से आती है, एक गुरु सेवा से विद्या आती है, एक बहुत धन हो पास में अच्छे विद्वानों को धन दे दिया जाए उससे भी पढ़ाते तो धन के द्वारा विद्या आती है, अथवा विद्या या विद्या आपके पास में कोई विलक्षण विद्या है और दूसरे पास में दूसरी विद्या है, वो अपनी विद्या अपने को दे दे, हम उनको अपनी विद्या दे दें, ऐसे विद्या से विद्या आती है। चतुर्थम नैव साधनम, और कोई साधन नहीं है। तो तत्व ज्ञान के लिए अपने ऐसे ही विद्या अध्ययन करना है। तो गुरु शुश्रूषया विद्या ये शब्द के चलती है, पितृदेव मातृदेव पितृदेव भो आचार्य देव अतिथिदेव भो, जो स्नातक होते हैं विद्या पढ़ा करके भेजते हैं तो उसको शिक्षा मिलती है कि तुम मातृदेव भो, पहले सबसे पहले माँ का नाम आया है, मातृदेव भो माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, फिर पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, फिर गुरु को परमात्मा का साक्षात स्वरूप समझो, फिर अतिथि को, चार बात बताई, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, ये है। जब पढ़ा करके विद्यार्थी को स्नातक को बता दो, उस स्नातक के लिए ये शिक्षा बताई है, ये उपदेश बताया है, ऐसे लेकर तुम जाओ अब घर पर जाओ गृहस्थाश्रम करो। तो विद्या अध्ययन करना उसमें होता है, तो बड़ी अवस्था में आप विद्या अध्ययन, तो गुरु सेवा सब जगह चलती है, गृहस्थाश्रम में भी गुरु सेवा है, वानप्रस्थ आश्रम में गुरु सेवा है, संन्यास आश्रम में भी गुरु सेवा है, तत्व ज्ञान के भी करीब गुरु सेवा है, तत्व ज्ञान होने के बाद भी गुरु सेवा ऐसा आया। आदो आदि में तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए गुरु सेवा है, और फिर कृतज्ञतापन बताया है कि विद्या पढ़े उसके सदाई ऋणी रहना चाहिए, और अदृशम सदृशम उसने बताया शंकराचार्य महाराज के श्लोक में आता है कि सगर साथ में समता मनु साथ में बैठना परम जो यावद आयुष त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वर, जब तक उम्र रहे तब वेदांत गुरु और ईश्वर की उपासना तय करना चाहिए। अद्वैतम त्रिलोक से लोकेशु न दैव नाद्वैतम गुरु ना सह, त्रिलोकी में सब जगह अद्वैत परमात्मा समझे पर गुरु के साथ अद्वैत न करे, गुरु वैसे उस आश्रम पर बैठ जाए और बरोबर बैठे ये नहीं, ये उम्र तक संन्यास की हो जाए तो भी गुरु का सदा आदर करता रहे उम्र भर ही, आदि में विद्या लेने के लिए और फिर कृतज्ञता हो जाएगी, जिसने विद्या ली उसी गुरु का तिरस्कार करेगा तो कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ महापापी होता है, उपाय जिसका लिया उपकार किया पाया है फिर उपकार नहीं करेगा तो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ सागर संगम में तीर्थों में जाने से सब पाप से नष्ट हो जाता है, परंतु कृतज्ञ का कल्याण नहीं होता, एक विश्वास घाती का कल्याण नहीं होता, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये नरा विश्वास घातका ते नरा नरक यान्ति यावत् चंद्र दिवा करूं, विश्वासघाती है जो विश्वास करने पर विश्वासघात करता है, जब चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक वे नरकों में रहेंगे, ऐसे ऐसे कृतज्ञता दोष बताया है। तो कृतज्ञ विद्यार्थी को चाहिए तीन बात बताई, उनमें अभी विद्यार्थियों के लिए एक गुरु सेवा है, गुरु सेवा से विद्या आती है। गुरु सेवा क्या होती है, असली गुरु सेवा ये जैसे उनके जल है अन्न इसने सेवा कर दी, कपड़ा दिया, दंडवत के नमस्कार किया, ये सब बताया है। तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षति ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिन, भगवद गीता में बताया है कि उस तत्व को प्रणिपात न लंबा से लंबा पर दंडवत कर नमस्कार करे, विद्या लेना है तत्व ज्ञान करना, तो यही बात बताई है। और उसे दूसरी बात बताई प्रणिपाते न परिप्रश्न न, जब गुरु जी महाराज खूब शांति से बैठे हो उस समय बड़ी नम्रता से सरलता से जाकर के उनसे पूछे तो उसे ज्ञान मिलता है, और एक सेवा करने से, तो विद्यार्थी को नम्रता चाहिए, गुरु चरणों में नमस्कार करे, पहले सुबह उठ करके माँ को नमस्कार करी, मातृदेव को माँ को पहले नमस्कार करी। संसार में जो संबंध है उन संबंधों में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा बताया है, तो माँ को नमस्कार करे, पिता को नमस्कार करे, बड़े भाई बड़ी बहन भौजाई हो उनको नमस्कार करे, घर में पढ़ने को जावे तो उनको पंडितों को नमस्कार करे, जो गुरु में रहे तो उनको नमस्कार करे। ऐसे नमस्कार की विधि है, तो तद्विधि प्रणिपाते न, और प्रश्न प्रश्न सेवया और परिप्रश्न पढ़े जब पूछता रहे, कोई शंका हो साथ गुरु जी से पूछे, तो ऐसे पूछने से उनको विद्या आती है। ये बात एकदम ठीक है। हम लोग पढ़ते थे तो दो चार विद्यार्थी मिलकर पढ़ते, पढ़ने के बाद में जाकर के उस संध्या को विचारते कि इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या कहा महाराज ने, इसमें क्या कहा, सब ठीक ठीक उनका विचार करते। विचार में कोई बात नहीं आती, याद नहीं रही, दो तीन पढ़े बंदे उनकी जो किसी को याद नहीं आई, जो किसी को याद नहीं आई, कोई बात किसी में कोई कहती तो सब ठीक हो जाता है, कोई कोई बात ऐसी रहती है जो याद नहीं रही। तो जाकर के हम पूछते, मेरे काम पर आया जाकर पूछा महाराज ये बात है तो बोलो, वो हम पढ़ते हैं तो महाराज के आगे पढ़ते ही समाधान हो जाता है। महाराज बोले जैसे पहले तो इस सिद्ध क्या हुआ, ये विद्वान होते हैं उनके पास में विद्या का घेरा रहता है, प्रकाश रहता है, उसमें जाओ तो वो शंका हम समाधान नहीं कर सके, वहां जाने से पूछते पूछते समाधान हो जाता है। ऐसी बात देखी है, जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनके पास में एक विशेष प्रकाश रहता है, तो उनके पास में वो ज्ञान स्वतः ही आता है, स्वाभाविक ही उन तेज से, और वो कृपा करते हैं गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे विद्या आती है। जैसे बछड़ा होता है गाय का, तो गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तब तो गाय खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, उसको कहते हैं गाय पावस गई, वो पावस जाती है गाय, तो पावस जाती है तब तो वो गाय हुंकार करती है, और बछड़ा आ जाए तो बछड़े को चाटती है, वो चाटने से ऐसा उसको गाय को आनंद आता है, दूध शरीर में रहने वाला थन में आ जाता है। ऐसे ही प्रेम से आदर से विद्यार्थी पढ़ने वाला आता है तो वो गुरु जी के जो विद्या पढ़ी है वो सब की सब उनके सामने आ जाती है, मुख में आदर प्रकट हो जाती है। ऐसे श्रोता बहुत प्रेम से सुनते हैं तो कहने वाले के मन में सब बातें आप साफ प्रकट हो जाती है सब ही। तो इस तरह से गुरु सेवा से चीज मिलती है, सेवा सेवा उनके मन के अनुकूल चलना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन करना, उन कहने के अनुसार चलना, तो गुरु आज्ञा से काम करना, हर एक काम करना तो गुरु की आज्ञा लेकर के। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, भाई मैं बचपन में पढ़ा हूँ देखा है, जाना हूं तो यूं करती हूँ, अर्थ क्या हुआ, पेशाब करने को जाना तो यूं करती, गुरु जी के साथ यूं करती, मन पेशाब करना है छुट्टी जाना हो तो यूं करती। तो ऐसे हरेक काम, भोजन करना है, पीना है, काम करना है तो गुरु की आज्ञा करके काम करना, तो आज्ञा वो सेवा है। अर्जुन ने सेवा यही तो की, गीता सुनाई पूरी, और भगवान ने कहा क्यों तुमने मेरी गीता सुनी, एकाग्रता एकाग्रता करके तुमने गीता सुनी कि नहीं, दूसरी बात तेरे अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह से उत्पन्न होने वाला अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं, ये दो बात पूछी। तो प्रश्न सुनाता है उनको, पूछते हैं तो उन समझे कि नहीं समझे इस तत्व को, तुमने अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह में नष्ट हो गया महाराज, आपसे कहने से मोह नष्ट हुआ, अरे अज्ञान ने और नहीं बोला, तुमने सुना कि नहीं अच्छी तरह से, इसका उत्तर नहीं दिया नष्ट हो मोह, तो उत्तर इसमें आ गया कि ठीक सुना तो मोह नष्ट हो गया, परंतु ये नहीं, नष्ट हो मोह स्मृति लद्वा तत्प्रसादात, ये ध्यान देने की तत्प्रसादात। तो मैं वो बात कह रहा, जो गुरु बसा दूध पीता है तो दूध से पुष्टि आती है, परंतु किसी बछड़े की माँ मर जाए, गाय मर जाए, और उसको दूसरी दूध दूसरी गाय दो करके उसका दूध पिलाया जाए, तो दूध पिलाने से बच जाता है, बछड़ा ठीक हो जाता है, परंतु माँ से जो दूध पीता है वो बछड़ा जैसा हृष्ट पुष्ट होता है ऐसा वो दूध पिलाने पर भी नहीं होता। तो केवल दूध से पुष्टि नहीं आती है, दूध के साथ साथ माँ का जो स्नेह है वो चाटती है, हुंकार करती है, खुश हो जाती है, उस प्रसन्नता से पुष्टि ज्यादा आती है। इसी तरह से गुरु महाराज से पढ़ो तो गुरु महाराज खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उस प्रसन्नता से विद्या एक और तरह आती है। कहते हैं सुनने से भी विद्या वो सीख लेगा, विद्या आ जाएगी, परंतु वो जो कृपा की विद्या ने अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसादात, आपकी कृपा से हुई, तो वो कृपा से एक विलक्षण मिलती है, तो वो गुरु की सेवा करने से होती है। तो गुरु की सेवा विद्यार्थी क्या करे वो बात ध्यान देकर सुनना आप लोग बालको। सेवा क्या है कि जो विद्या पढ़ाई है गुरु जी ने वो ठीक तरह से अध्ययन कर लो, आप पढ़ाई कर लो, और जब कोई पूछे तो पट बता दो। ठीक अध्ययन करने में बता देने से गुरु दूर बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सभा में कई बातें पूछी जाए और विद्यार्थी समझ बता दे तो गुरु बड़े खुश होते हैं। ये गुरु सेवा है बड़ी, जितना पढ़ा है उनका ठीक तरह से याद रखना, तत्परता से अच्छी तरह से सीख लेना है, ये गुरु सेवा है। गुरु खुश हो जाते हैं, खुश हो सेवा ही होगी, उससे विद्या आती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से। तो आपके ना पास में धन है ना कुछ, आपके अलौकिक विद्या है जो उनको देकर ले लो, आपके तो गुरु सेवा ही है यार। ये गुरु सेवा दोनों बात हो गई, विद्या भी ठीक पढ़ गए, गुरु सेवा भी हो गई, अच्छी तरह से पढ़ रही है, तो बड़े खुश होते हैं। गुरु महाराज होते हैं वे ऐसी बात बताने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दूर बैठे बैठे गर्व हो जाते हैं। आज तो छोरे ने मेरी शर्म रख दी, लज्जा रख दी, मेरी इज्जत बढ़ा दी, ऐसे आप विद्या हथियार करो तो अच्छी तरह से विद्या अध्ययन करो, ऐसे गुरु महाराज की सेवा लो, उनको खुश करके प्रसन्न करके। आजकल लड़के ख्याल नहीं रखते हैं, आजकल के लड़के तो ख्याल नहीं रखे बात नहीं है, ये अपनी एक कमेटी मीटिंग बना सभा बना लेते हैं, वो सभा बना करके और गुरुजी पर शासन करते हैं। पहले तो गुरुजी थे जिसको विद्यार्थी को चाहे पढ़ावे नहीं तो वो निकाल दें, आज विद्यार्थी चाहे तो गुरुजी को रखे नहीं तो गुरुजी को निकाल दें, यूनियन बन गया ना। तो ये बहुत पतन की बात है, उनको विद्या नहीं आएगी, लंठ रहेंगे, विद्या नहीं होती है, नहीं होगी। गुरु सेवा से जो विद्या आती है, अब ऐसे गाय को कैसे दूध लोगे, हम गाय पाव से नहीं तो कैसे आएगा, तो इस तरह से विद्या बढ़िया नहीं आती है। तो बालक ऐसे उद्दीनता करते वो उद्दीनता मत करना भाई, अगर विद्या चाहते हो तो गुरु जी की सेवा करना, सेवा से विद्या आती है। वो विद्या आती है जैसे अगाड़ी उनकी चौगुणी विद्या बढ़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण भी पढ़े थे सांदीपनी महाराज थे उज्जैन में, सांदीपनी महाराज पंडित जी थे उनसे पढ़े थे, तो सांदीपनी महाराज आप खुद भी पढ़े थे। एक बात याद आएगी बीच में कहता हूं, ध्यान से सुनना पर करना विचार पूर्वक, करना है ना सुनने की तरह नहीं है। तो सांदीपनी पढ़ते थे तो सांदीपनी कोई विशेष बुद्धिमान नहीं थे, साधारण बुद्धि इस जड़ भी नहीं थे साहब, और विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे। विद्यार्थी साधारण बुद्धि होती है, एक मध्यम बुद्धि, एक तेज बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि होती है विद्यार्थियों की। तो वो पढ़ते थे परंतु उनमें एक बात थी, गुरु सेवा बहुत करते, केवल गुरु सेवा में तत्पर रहते हरदम, कोई काम हो गुरु की सेवा, वे सबसे तेज थे गुरु सेवा में। तो गुरु सेवा में तेज है तो गुरु जी ने परीक्षा ली कि कैसी सेवा करता है, तो सेवा क्या करे। बालक समझता नहीं, बालक को तो कह दे जो कर दे चट, तो कह दे जो कर दिया, ऐसे सेवा करते थे। तो गुरु जी के मन में आई परीक्षा की, तो दूसरे विद्यार्थी गए थे शांति अपनी बैठे थे पास में, तो गुरु महाराज जी ग्रस्त थे तो वो ब्रह्मचारी ग्रस्त होने वाले थे। तो महाराज गुरु जी का बच्चा खेल रहा था, संदीप ने हमारा इस छोरे को कुएं में डाल दिया, चटू चट कुएं में डाल दिया, इसे ब्रह्मचर्य देखा दौड़े भागे ने देखो देखो कैसा है कुएं में डाल दिया गुरु महाराज के बालक को कुएं में डाल दिया जल्दी जालू उतार निकाल लिया है कैसा ये है मारपीट करने लगे गुरु जी का मारपीट नहीं करना भाई अपना विद्यार्थी है आपका गुरु भाई है इसको मारा जा रहा है मारपीट नहीं करना उन्हें ऐसा कहा है नहीं गुरु जी ने कहा था इतना भी नहीं कहा मारपीट करने तो दो चार लगा दी सुन ले सह लिया पर अपनी सफाई नहीं दी एक दिन विद्यार्थी आ रहे थे अपने पन से समिता आदि लेकर के आ रहे थे उस समय कहा संदेह भी नहीं कहा महाराज इन घर की आग लगा दी पीछे जाकर आग लगा दी और कई विद्यार्थी बुझे बुझे आग लगा दी बुझाओ बुझाओ आग बुझाओ आग बुझा दी कहते कैसा विद्यार्थी है गुरु जी को आग लगा दिया घर के घर जलाता है ये विद्यार्थी है तू गुरु जी को मानता है विद्यार्थी चेला है भाई गुरु जी का मारो मार बच्चा है अपना गुरु भाई है कोई बात नहीं ऐसे उनकी परीक्षा नहीं थी तो सांदीपनी महाराज गुरु आज्ञा पालन करने में बड़े तेज थे फिर वे महाराज भगवान को पढ़ा दिया और विद्यार्थियों को पढ़ा दिए वृद्ध हो गए अवृद्ध हो गए बीमार हो गए तो अपने इतने पढ़े हुए पंडित हो गए महाराज वहां गुरु बन गए उनके बहुत यजमान यज्ञ आदि करते हैं बड़े बड़े पंडित हो गए वे यहाँ तो विद्यार्थी थे वहां पंडित हो गए तो उनको सबको पत्र भेजा समाचार दिया कि भाई अब शरीर जा रहा है आप लोग सब आओ मिल लो कम से ही जा रहा है तो बड़े बड़े पंडित थे वह आए सभी सब महाराज आए तो गुरु महाराज ने हमको दिया किसी को अपना पंचपात्र दे दिया किसी को आत्मनि दे दी किसी को वो पवित्री दे दी किसी को आसन दे दिया किसी को माला दे दी ऐसे पंडितों ने बड़े आदर से ली आत्मनि दे दी आसन को चीत हो छोटी सी दे दी वो भी दे दी गुरु महाराज प्रसाद के कारण से बड़े आदर से उन्होंने ले कि गुरु महाराज प्रसाद मिले डाब का आसन दे दिया अब को ये दुर्लभ चीज हो रही है परंतु देना तो गुरु महाराज का ये बड़ा भारी होता है उसके साथ में विद्यार गुण सब कुछ आते हैं उसके साथ में ऐसे देते देते सांदीपनी आए गुरु जी कठिन रहोगे कि बेटा तेरे को क्या दू तेरे को दे दे मेरे पास कोई चीज नहीं है मैंने ऐसी गुरु सेवा की तो मेरे पास कोई चीज नहीं है क्या दू तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोकीनाथ परमात्मा तुम्हारे चेला बनेंगे ये आशीर्वाद दिया गुरु जी ने जिसे आदर के कृष्ण भगवान ऐसी गुरु सेवा जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है कितनी विलक्षण बात है आदमी तरह तरह पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं पर कृष्ण भगवान बलदेव जी के भी गुरु बन गए वो किस बात से गुरु सेवा से गुरु की प्रसन्नता से उनकी आशीर्वाद मिलती है जो संत महात्मा पुरुष होते हैं गुरु होते हैं माता पिता होते हैं बड़े होते हैं आचार्य होते हैं उनकी अगर कृपा आप प्राप्त करो तो बहुत विशेषता से लाभ होता है बिना पढ़े आती है बातें पढ़े और थोड़ी आती तो और बहुत विशेष आती है तो गुरु सेवा करना है माँ बाप की सेवा करना है गुरु की सेवा करना है अतिथि की सेवा करना है ये खास शिक्षा है तो ये सेवा करने से विद्या आती है विद्या पढ़ते समय विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि एक एक से तेज बने अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी श्रेणी में जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास में ऐसा भाव रखो कि मैं सबसे तेज बनूं ऐसा भाव रखो महत्वाकांक्षा है वो बड़ी ऊंची चीज है अभिमान करना खराब है परंतु अच्छा बनने की इच्छा सदैव रखनी चाहिए पढ़ने में कभी अभिमान नहीं करा मैं पढ़ गया अभिमान करता उसकी विद्या गाड़ी बढ़ती नहीं घड़ा भर गया अब क्या भरेगा तो उम्र भर विद्यार्थी जीवन है पहले मैंने कह दिया कि मनुष्य जीवन 84 लाख जोड़ी में विद्यार्थी जीवन है ये तो ये उम्र भर पढ़ाई करते ही रहना है कभी ऐसा नहीं कि मैं तो पढ़ गया मैं तो बहुत जान गया हूँ ऐसा अभिमान न करे पढ़ता ही रहे तुझको पढ़ाई आती रहती है तो अपने क्लास में सबसे मैं तेज बनूं मैं ये भाव नहीं कि दूसरा कमजोर रह जाए ऐसे नहीं दूसरों को कह दो तुम तेज बनो और मन में रखना चाहिए कि मेरे से तेज बने तभी तो उनसे तेज बनने का मेरे को मौका मिलेगा, और ये कमजोर रहेंगे थोड़ा तेज होंगे, इतने में मैं तो रुक जाऊंगा। इस वास्ते तुम तेज बनो, हमारे से ऐसी भावना रखी मेरे से तेज बने जिससे इनसे मैं तेज बनू, ऐसी भाव रखना। ऐसे ऐसे भाव में विद्या अध्ययन में, खेल में, काम करने में, ना करने में, सब ऐसे करना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि भी अपने शरीर का काम अपने आप ही करे, घर पर काम धंधा हुए तो माँ की सहायता करो काम करने में, रसोई और बढ़ावे माँ तो उनको लाकर सामान दे दो, चूल्हा चेता दो, आटा भगवान को सावन करके रख दो, सागर बनार कर दे दो, ऐसे माँ की सेवा करो। लड़कियों को विशेष सेवा करनी चाहिए, ऐसे माँ की सेवा करो। बड़े भाई भौजाई है उनको प्रणाम करो रोजाना, और उनकी भी सेवा करो, उनकी भी प्रसन्नता लो। प्रसन्नता लेने से, नमस्कार करने से दो जाति का लाभ होता है। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो सेविन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रोजाना अच्छे बड़े बूढ़े पशुओं को मनुष्यों पास में रहे और उनकी आज्ञा पालन करे और उनको रोजाना नमस्कार करे तो चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में यश होता है, शरीर में बल आता है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से आयुर्विद्या यशो बलम ये बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऊंचे आती है चीज। जो वो चीज होगी हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे, ऊपर से आएगी वो विद्या हम लेंगे, तो नम्र होकर के सरल होकर विद्या ले जाए, उसको विद्या विशेषता से आती है, स्वभाव में चीज आती है। इस वास्ते खूब आसन देवे महाराज कृपा करके और जो सिर पर हाथ रख दे उससे बड़ा विकास होता है भीतर, और पीठ रहने लगा उससे तो सिर पर आने से विद्या अधिक आती है, पीठ ठोकने से सूरवीरता बल ज्यादा बढ़ता है। इस तरह से गुरुजनों से अपने विद्या लो, विद्यार्थियों को चाहिए ऐसे गुरुजन घर में भी जितने हैं, माँ को सबसे ज्यादा दादा दो, बड़ी बहन को माँ की तरह ही मानो, भाई भी पिता के समान होता है बड़ा, ऐसी मेरी सेवा करो। ऐसे मैंने कई कुल देखे हैं, कोई कोई सज्जन मेरे को मिले हैं, उनसे मैंने प्रश्न भी किया है तो बड़ा सुंदर उत्तर मिला है। बड़े भाई रह गए तो बड़े भाई जी गए थे तो उनकी बात आई कि हमारे पिताजी ऐसे शिक्षा देते थे बहुत अच्छी, उनके पुत्र बड़े शेष होंगे, विचार आते हैं नाम बताने के लिए। तो उनको मैंने पूछा हरिकृष्ण जी से, शेठ जी जयदयाल जी थे, इनके पिताजी थे खूबचंद जी, तो वे व्यापार करते तो व्यापार में एक बात कहते और पूछ लेते ग्राहक से, एक मूल्य कहूं मुलाई करूं तो एक बात कहते तो एक दाम में कह देते, मोल मुलाई करते हैं तो कसा कसी करते, फिर अंत में लेते उतना ही अधिक नहीं, अब 5 रुपया मूल है 5 रुपया ले ले, पहले के 7 रुपया कह देते, वो कह नहीं 4.5 कर दो, अंत में देता वो तो 8 आना 10 आना ज्यादा ही लगता उसके, फिर उतना पैसा देगा, इतना हम इतना ही लेंगे। तैने कहा मोल मुलाई इस बार की है, तो जयदास जी कहते क्यों झंझट करो, एक ही बात कहो। तो शरीर शांत हो गया तब कहा हरे कृष्णा अपने एक बात कहनी है, अपने से मोल मुलाई करनी नहीं है, इतना नाम है लो लो नहीं जाओ जाओ। तो ऐसी बात हुई तो ऐसे पिताजी शांत हो गए। तो हरे कृष्ण जी से मैंने पूछा, हरे कृष्ण जी आपके पिता शांत हुए तो आपको दुख हुआ, मेरे को दुख क्यों होता है, मेरे तो है नहीं भाई जी है मेरे, कितना भाव है बड़े भाई पर, मेरी चिंता क्यों होती भाई जी है। ऐसे बड़े भाई पिता के समान होते हैं। कन्यादान भी करना हो तो माँ बाप हो वे करते हैं, वे नहीं हो तो बड़े भाई भौजाई वे कन्यादान करते हैं, छोटे भाई बहन पुत्र की तरह ही होते हैं। इस तरह से बड़े घरों में अपने सबका आदर करो, सत्कार करो, जिससे कि आपको विद्या हो गई तो आयुर्विद्या यशो बलम सब बढ़ता है। ऐसे संसार में बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करे, ये भाई बहनों के सबके लिए हो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक अपने भी काम में लानी है ये बातें, ऐसे लाओ तो वहां विद्या आएगी, सब कुछ अपने को आएगा वहां से। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे। हंसले और नहीं आई है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, तो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे। तो गुरु महाराज के हो जाओ विद्या विद्या की, ऐसे माता पिता के हो जाओ जिससे सब संपत्ति और धन मिलेगी, वो तो मिलेगी ही, परंतु वो करके देने से वे खुश बहुत हो जाते, वह प्रसन्नता लाती है गाय की तरह विशेषता से। वो बछड़े पर गाय होती है ना, तो गऊ है, ये कायदा है गाय का कि किसी चारे में गोबर अथवा गोमूत्र का छींटा लग जाए, गोबर हो जाए तो गाय खाती नहीं, वो चारा नहीं चरती। बछड़ा होता है मल से भरा हुआ, उसको गाय चाट लेती है, चीज तो वही है, वही अशुद्ध चीज है, पर बछड़े के चाटने में गाय खुश होती है। खुश नहीं हो तो बछड़ा चाटने से गाय का दूध बढ़ता है। किसी बयान में आप देखना चाहो तो उसको धोकर के बच्चे को सीख कर दो चाटने में, तो उस बयान में दूध कम होगा गाय का, या जो वो चाट कर साफ करती है दूध बढ़ता है। तो वो ऐसा वो वत्स होता है, वात्सल्य प्रेम इसी बात को लेकर हुआ है। गाय का ऐसा वात्सल्य होता है कि वहां अशुद्धि नहीं करती। गोबर में तो गोमूत्र पड़ जाए तो खाती नहीं, गंध हो जाए, और बछड़े को चाट करके साफ कर लेती, कुछ चाट लेती जीव से। तो इस वास्ते वो वत्स वत्स रहे, वात्सल्य प्रेम उसका नाम होता है। तो माँ स्त्री से वात्सल्य प्रेम रखती है, गुरु महाराज भी ऐसे ही रहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु जी उससे विद्या बहुत आती है, फलीभूत होती है, विकास होता है। तो इस वास्ते विद्यार्थियों को सदा गुरु सेवा करनी चाहिए, घर में माता पिता आदि की सेवा करना, उद्दंडता नहीं करना, उश्रृंखलता। आजकल विद्यार्थियों में उद्दंडता आ गई है, मूर्खता आएगी उनमें, वे क्या करें, उद्दंड हो गए तो कॉलेज में कुर्सियां तोड़ देते हैं, कांच फोड़ देते हैं, कमाड़ के फाटक है उसकी ता का कमाड़ तोड़ देते हैं, ऐसे कुर्सी तोड़ दे, टेबल तोड़ दे। वे समझते हैं कि हमारे को तो हमारी बात माननी चाहिए, और ये नहीं सोचते कि ये नुकसान किसके हो रहा है। ये माता पिता बड़े पुरुष चले जाएंगे तो बची हुई चीज तो अपनी रहेंगी, तो अपना ही नुकसान करते हैं। इतनी मूर्खता छा गई, उनको याद ही नहीं आता कि हम इन चीजों को नाश कर रहे हैं, तो चीजों किसकी नाश हो रही है, तुम्हारी तो घर की संपत्ति नष्ट हो रही है। पर जो दृढ़ता में बेहोशी आ जाती है, तो ऐसे विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। एक बात याद आ रही, गोरखपुर में मैदान में व्याख्यान देना काम पड़ा, तो विद्यार्थी आया मेरे से लड़ से उठक ले गया, जानते हो हम विद्यार्थी हैं, तो राक्षस होता है विद्यार्थी, क्या होता है नाम का, हम विद्यार्थी हैं सब। तो ये विद्यार्थी कैसे होती है, ये सभ्यता रही आजकल की। तो भाई ऐसा विद्या भी ऐसी आती है, पुराने जमाने में विद्यार्थी थे उनको पूछते तो कितनी बात, आज पूछे तो विद्यार्थी नहीं बता सकते। शास्त्री विद्यार्थी, शास्त्री में पास हुआ शास्त्री कहलाता है, हा का प्रयत्न कौन सा होता है, संज्ञापन में लोग कौन नहीं कह बता सकते, ऐसा काम पड़ा है, क्योंकि अध्ययन करते ही नहीं कह रहे उतर करके, अब कैसे आवे उनको पास। तो ऐसे संस्कृत विद्यार्थी ऐसी बात देखी है मैंने, अच्छे अच्छे विद्वान कहलाते हैं, पर मार्मिक बात मुझे याद नहीं, अध्ययन नहीं करते, वो गहरे उतरे समझते नहीं। आप गहरे उतरे समझो, विद्या ध्यान करो, ये सामने यूनियन बना करके जो सामने लड़ाई करते हो इसे विद्या नहीं आती। बहुत बार ऐसी बात होती है जो विद्या मौके पर परीक्षा में नहीं बैठ सकते, आप ऐसा मत करना कभी, उद्यमता उस संकल्पना न ला करके और खूब विद्या ध्यान करना, इससे अच्छे बनो। हाँ ये तो बात बोल रहे, सत्य समान, सत्य समान तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साज है ताके हृदय। परमात्मा का स्वरूप सत्य माना, सत्य स्वरूप है तो सास बोलना, सास बोलने से वाणी की तपस्या होती है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, योग दर्शन में लिखा है कि सत्य बोलने वाले की वाणी सिद्ध हो जाती, जो कैसे काम हो जाता है, गाड़ी बन जाता है, वैसे ही साफ दे दे, वरदान दे दे, सब वैसे ही हो जाए। शक्ति में वाणी में तेज होता है, तो इस वाणी में तेज आता है सत्य पालन करने से। तो सास बोलो, घर पर भी कोई कसूर हो जाए तो सास सास कह दो। अरे माता पिताओं को चाहे कि सच्चा कहते वाले उसको फिर दंड मत दो। स्कूल में भी इसलिए पढ़ते हो, कोई किसी दवा टूट गई, किसी कर्म तोड़ गए, किसी चोरी कर ली, तो चोरी नहीं करना कभी दान आदि। और वो हो जाए अपने से कसूर तो बोलते सास सास कह दो। तो सत्य बोलने का बड़ा भारी महत्व है। अब बहुत सी बातें हैं सत्य में, अब कितनी बताओ इतनी बताओ भी। तो इसे सच बोलना, ऐसे ही अपने चोरी नहीं करना, आपस में लड़ाई नहीं करना, लड़ाई हो तो गाली नहीं देना कभी, कुछ भी आ जाओ कोई बात नहीं, उसमें बलि बढ़ेगा, मुक्का मुक्का मार दो नहीं, गाली नहीं देना, अशुद्ध शब्द नहीं बोलना, गया शब्द गंदा शब्द बोलने से अपनी जुबान गंदी होती है, सुनने वाले कान गंदे होते हैं, वायु मंडल गंदा होता है, बहुत नुकसान होता है। इस वास्ते प्रेम का वर्ताव करो, ऐसा प्रेम रखो, आपस में मित्रता रखो, जैसे सुदामा के साथ भगवान ने निभाई, ऐसे भैया इस भूपर भरे निरेह नेह करतार, प्रेम फिर ही विश्व में नेह निभाना, तो नेह को निभाओ, मित्रता को निभाओ, ऐसे करो। कोई चीज मिले अच्छी तो छोटे भाई बहन को दो। छोरियों की बात है, मैंने स्वर स्वर दोनों की बात देखी है, छोरी अपने छोटे भाई बहन को प्यार से रखती है, कोई मीठी चीज मिल जाए तो छोटे भाई को अपने पास से दे देती है, स्वर खा जाता है। तो ऐसी भगवान ने बुद्धि दी है उनको, क्योंकि उनको बालक पालन करना है, अगाड़ी बच्चों का पालन करे तो कैसे करेंगे, ऐसा हृदय भगवान ने दिया है। सत्संग में भी देखो तो माताएं ज्यादा आती है, मंदिरों में भी माताएं ज्यादा जाती है, तो लड़कियों को ये ठीक करना चाहिए। तो बालकों को चाहिए कि हम भी काती नहाएंगे, बच्चियां नहा बहना नहाएंगे, हम भाई नहीं नहाएंगे, ऐसे धार्मिक काम में जाओ, सत्संग करो, गीता पढ़ो, गीता के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, लोग और बलोक सुधरते हैं, गीता देश और विदेश में अपना धर्म मानते हैं नहीं मानते हैं। वे गीता का आदर करते हैं और हिंदुओं का आदर नहीं करते, मुसलमान है ईसाई है, वे भी गीता पर दांत लिखते भी है, गीता की महिमा भी करते हैं, विदेशों में गीता का प्रचार और आदर ज्यादा है कम नहीं है। ऐसे गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान राम जी के चरित्र सुनो, पढ़ो कृष्ण भगवान के चरित्र पढ़ो और सुनो, और भक्तों के चरित्र जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गाशता मन शुद्ध करने के लिए, तो निर्मल बनाने के लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो, वो कहानी होती है समझ में आ जाती है सुगमता से ही। ऐसी कहानी माँ यशोदा भी सुनाया करती। एक दिन की बात थोड़ी कह रहे, समय ज्यादा हो गया, यशोदा मैया आए, वो केवल लाला सो जा कि माँ कोई कहानी सुना, कहानी सुना। तो बच्चों को कहानी सुनने का शौक बहुत ज्यादा होता है, तो लाला सुन रहा है, माँ सुना रही है कि राज देख, अयोध्या नगरी में राजा एक दशरथ थे, उनके चार बेटा हुए, रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, करते रहे। उसे सुनते भाई वो सब कथा सुना, जैसे हुआ विश्वामित्र आए, फिर गए, ब्याह हुआ, पीछे आया, पीछे आकर के तो कहीं ने वरदान मांगे, वर्तमान वनवास हो गया, फिर वनवास करते रहे भगवान, सुनते रहे सुनते सुनते। पंचवटी में वहां एक दिन रावण आया और वो लेकर के सीता जी मरे कोई रक्षा करो, इतने में मरे उठे सौमित्य धनुर्धि, अरे लक्ष्मण धनुष वाले धनुष का धनुष पाड़ा। माँ के क्या क्या बोला ला, क्या हो गया क्या क्या सीता जी की चोरी करे, धनुष बांध ला, लक्ष्मण धनुष बांध ला जल्दी। माँ बोला सोचा लाला क्या हो गया, सीता जी जो ऐसी कथाएं सुना करती माताएं, ऐसे भगवान की कथा जिनसे उनको नहीं गाती, तो ऐसे माताएं प्यार करती, उन माताओं का आदर करो भाई, सच बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने ठीक तरह से आचारहीन पुनंति वेदा, आचरणहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते, तो आचरण की बड़ी महिमा है, विद्या अध्ययन है, ये तो आपका है श्रृंगार और आपका शरीर सदाचार है, माता पिता की भक्ति है, सत्य पालन है, धर्म है, दया है, क्षमा, ये आपका शरीर है और कई लिपि और कई तरह की भाषा सीखना आपका श्रृंगार है। श्रृंगार बहुत हो पर प्राण निकल जाए तो मुर्दे का क्या काम का, और श्रृंगार नहीं है ऊपर परंतु प्राण के तो जीता हुआ आदमी है, तो आपके सत्य आचरण है, वो आचरण ठीक है तो आपका जीवन है, और आपने विद्या बहुत अध्ययन किया, आचरण आपका भ्रष्टाचार है तो आपका जीवन कोई काम का नहीं, मुर्दा जीवन है। इस तरह से अपने अनुष्ठान अच्छा करो, धर्म का पालन करो, शिक्षा ध्यान करो, जिससे अपना आचरण ठीक बने। नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात पूछना हो तो पूछ लो भाई।